अब तत्वार्थ के प्रथम अध्याय के अंतिम प्रकरण में आचार्य उमा स्वामी महाराज और फिर टीकाकार सर्वार्थ सिद्धि के रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये खुलासा कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान पांच होते हैं, लेकिन इन पांच ज्ञानों में तीन ज्ञान मिथ्यात्व के संसर्ग से मिथ्या ज्ञान बन जाते हैं। मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान और विभंग ज्ञान, ये नाम दिए हैं। वर्तमान में बोला जाता है कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी बोलते हैं, क्योंकि तीसवें सूत्र में, तीस नंबर का जो सूत्र है, उसमें ये स्पष्ट कर दिया था कि सम्यक ज्ञान एक साथ एक जीव में कितने हो सकते हैं। तो वो ज्ञानावरण क्षयोपशम की अपेक्षा से कथन था कि एक साथ चार हो सकते हैं। गणधर देव चार ज्ञान के धारी होते हैं, तीर्थंकर भी दीक्षा के उपरांत चार ज्ञान के धारक हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान का जब वो प्रयोग करेंगे तो उस काल में एक ही ज्ञान होगा। उपयोग रूप एक ज्ञान होता है और लब्धि रूप बाकी जो ज्ञान उपयोग रूप नहीं है वो रहेंगे। जैसे श्रुत ज्ञान में जा रहे हैं कोई मुनि, तो फिर मत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान लब्धि रूप रहेंगे, ये सर्वत्र लागू कर सकते हैं। मत ज्ञान में तो बाकी तीन लब्धि रूप, मत ज्ञान उपयोग रूप रहा, और इसी प्रकार बाकी भी अवधि ज्ञान में है तो फिर बाकी तीन उपयोग रूप नहीं रहेंगे, लब्धि रूप रहेंगे, और अगर मन परे ज्ञान उपयोग में है तो फिर बाकी तीन लब्धि रूप होंगे। अब वो तीन ज्ञान कौन से हैं जो विपरीत भी हो सकते हैं, तो उसका समाधान करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि मति, श्रुत और अवधि, ये तीन ज्ञान विपरीत होते हैं। जैसे धूल वाली कड़वी तुम्बी में दूध डाल दिया जाए तो उसके संपर्क से दूध भी मलिन और कटुक कड़वे स्वाद वाला बन जाता है। फिर इसमें एक शंका की थी कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही सांप को सांप समझते हैं, रस्सी को रस्सी जानते हैं, फिर विपरीतता कहाँ रही? आप मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को कुमति अथवा मत्य ज्ञान कह रहे हैं और सम्यक दृष्टि के ज्ञान को मति ज्ञान कह रहे हैं, अभिनिबोधिक ज्ञान कह रहे हैं। तो जब दोनों एक जैसा ही जान रहे हैं तो फिर फर्क कहाँ रहा? उसी प्रकार श्रुत ज्ञान से जैसे सम्यक दृष्टि रूपाधिक को जानता है, उसमें चिंतन करता है, देखता है, मनन करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी वैसा ही कर लेता है। तो उसके लिए उत्तर देते हुए अगला सूत्र कह रहे हैं, अवधि ज्ञान के साथ भी वही बात है, जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान से पदार्थों को जानता है, रूपी पदार्थों को, वैसे मिथ्या दृष्टि विभंग ज्ञान से जान लेता है। तो इन दोनों ज्ञान में फर्क क्या रहा? उसके लिए 32वां सूत्र था, सद सतो रविशेषाद्य ऋक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत्। सत और असत माने विद्यमान और असत यानी अविद्यमान, इन दोनों में अविशेषात समान रूप से यद ऋक्षोपलब्धि है, मनमाने ढंग से जानने के कारण उन्मत्तवत, वो जो मिथ्या ज्ञान होता है वो उन्मत्तवत पागल के समान सम्यक की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। फिर उसका खुलासा भी किया, दृष्टांत दिया, यथा जिस प्रकार पित्तोदय आकुलित बुद्धिर, पित्त के उदय से आकुलित बुद्धि वाला, पित्त जब भड़क जाता है किसी का, तो मातरम भार्येति भार्याम अपि मातेति मन्यन्ते, माँ को पत्नी और पत्नी को माँ समझ लेता है। यदृच्छे और मनमाने ढंग से यदापि मातरम मातेवेति भार्याम अपि भार्येवेति च तदापि न तत्सन्नि सम्यक् ज्ञानम्। और फिर कभी वो माँ को माँ ही कह दे, जान ले, और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी चूंकि पित्त का प्रकोप है इसलिए उसके जानने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वो अभी जैसे माँ को माँ जान रहा है, लेकिन अगले ही क्षण क्या होगा, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पित्त का प्रकोप चल रहा है। एवं मत्यादि नाम अपि रूपादिषु विपरीयो वेदितव्य है, इसी तरह मति आदि जो तीन ज्ञान हैं इनका भी रूपादिक के विषय में विपर्यय जान लेना चाहिए। तथा ही वो इस प्रकार है, कश्चिन मिथ्यादर्शन परिणाम आत्मनि अवस्थित है। कोई मिथ्यादर्शन का जो परिणाम आत्मा में अवस्थित है, रूपाद्युपलब्धौ सत्यामपि, रूपादिक की उपलब्धि होने पर भी कारण विपर्यासम भेदाभेद विपर्यासम स्वरूप विपर्यासम च जनयति। वो मिथ्यादर्शन का जो परिणाम होता है आत्मा में, वो तीन प्रकार के विपर्यास को जन्म देता है, कारण विपर्यास को, भेदाभेद विपर्यास को और स्वरूप विपर्यास को। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था, तो वो तो एक प्रकार से विषय ताज़ा हो जाए एक दिन की छुट्टी के बाद, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा झलक के रूप में दोहरा दिया। अब इसका खुलासा क्या है कि विपरीतता जो उत्पन्न हो रही है मति आदि ज्ञानों में, उसमें कह दिया कि कारण विपर्यास होता है, एक कारण संबंधी विपरीतता आ जाती है उस ज्ञान में, मिथ्यादर्शन के कारण है ना, मिथ्यादर्शन के उदय से कारण के बारे में कुछ विपरीत निर्णय हो जाता है। विपर्यास का मतलब क्या है, विपरीतता आ जाती है। और भेदाभेद विपर्यासम, भेदाभेद संबंधी विपर्यास भी होता है, स्वरूप विपर्यास भी हो जाता है, इनको वो मिथ्यात्व उत्पन्न कर देता है ज्ञान में। उसका खुलासा आगे देखिए, कारण विपर्यास स्तावत, उनमें कारण विपर्यास इस प्रकार है, रूपाधीनाम एकम कारण अमूर्तम नित्यमित केचित कल्पयंती। कुछ ऐसे अन्य मत के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि रूपादिक जो भी हैं उनका एक कारण कोई अमूर्त और नित्य पदार्थ है, यानी उस अमूर्त और नित्य पदार्थ के प्रभाव से ये रूप आदि सब दिखाई देते हैं। जैसे ये बात स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी, अभी नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा मानना होता ही है लोगों का कि ईश्वर जो है अरूपी है, लेकिन उसी के कारण ये दुनिया में सारे रूप अपन देख रहे हैं, और ये सारे रूपों का निर्माण भी उस अरूपी से हुआ है। आ गया ना समझ में, ये उसका दृष्टांत है। तो ये कारण विपर्यास होगा, कारण विपर्यास का मतलब कि विपरीत कारण से वो कार्य मान रहे हैं, रूपी का कार्य रूपी होता है, अरूपी का कार्य अरूपी होता है, लेकिन उन्होंने क्या माना, रूपी का कार्य अरूपी को मान लिया, तो ये कारण की विपरीतता हो गई। और देखिए अपरे, दूसरे और जो मत वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, पृथिव्यादि जाति भिन्ना परमाणवश परमाणवश चतुस त्रि द्वेक गुणास तुल्य जातीयानाम कार्याणाम आरंभका इति। अब जैसे पृथ्वी बनी है, तो मिट्टी रूप जो परिणमन हुआ है वो किस में हुआ है, तो उनका मत ये है कि पृथ्वीव्यादि जाति भिन्ना परमाणव, वो पृथ्वी आदि की जाति वाले पृथक पृथक परमाणु हैं जो तीन दो अथवा एक गुणों वाले हैं। पृथ्वी में, पृथ्वी को उन्होंने मतों में आगे बताया यहां पर, अन्य वर्णयन्ति, वो अन्य और दूसरे मतों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा माना है उन्होंने कि तीन गुण वाला एक परमाणु होता है, दो गुण वाले एक परमाणु होते हैं, एक गुण वाले परमाणु भी होते हैं। पृथ्वी को गंधवती माना है, माने पृथ्वी जो होती है खुशबू वाली होती है, बारिश गिरती है तो आती है ना खुशबू, और हवा जो होती है उसमें भी कुछ अलग स्पर्श गुण माना है, और इसी प्रकार उन्होंने मतलब विभाजित कर दिए हैं कि ऐसे निश्चित जाति के परमाणु होते हैं, उन्हीं से ये सब काम होते हैं। अन्य वर्णयंती, और दूसरे अन्य मत वाले जो हैं वो क्या वर्णन करते हैं, पृथिव्यादीनि चत्वारि भूतानि, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चार भूत हैं, भौतिक धर्मा वर्ण गंध रस स्पर्शाः, और इन भूतों के जो धर्म हैं, इन चार भूत बताए ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चार भूत है, और इन भूतों से संबंध रखने वाले जो धर्म हैं, धर्म यानी गुण धर्म, वो है वर्ण गंध रस और स्पर्श। एतेषां समुदायो, इनका समूह रूप परमाणु रष्टक इत्यादि, रूप परमाणु नाम का कुछ होता है और अष्टक यानी आठ प्रकार का होता है। इस प्रकार उन्होंने कारण के बारे में ऐसे विपरीत निर्णय किया हुआ है, क्योंकि इनके जो प्रणेता थे, उस मत के जो प्ररूपक थे, उन्होंने ऐसी बात बता दी जैसा भी उन्होंने चिंतन किया होगा, क्योंकि बिना चिंतन के कोई भी व्यक्ति कोई भी बात नहीं करेगा। उनने जैसा चिंतन किया, उनको ऐसा लगा कि ये पृथ्वी की जाति के अलग परमाणु होते होंगे, जल की जाति के अलग होते होंगे, क्योंकि वो पर्याय उनकी अलग अलग दिख रही ना, पृथ्वी की अलग पर्याय है, जल की अलग पर्याय है, अग्नि की अलग है, वायु की अलग है। तो उन्होंने उस आधार पर अनुमान लगा करके ऐसा प्ररूपित कर दिया कि ऐसे विशेष परमाणु ही होते हैं। परमाणु शब्द केवल जैन दर्शन में नहीं है, अन्य मतों में भी है। तो ऐसे विशिष्ट परमाणु ही होते हैं जो इस प्रकार से परिणमन करते हैं। तो बोले कि रूप परमाणु रष्ट का, इस प्रकार इनका जो समूह होता है वो रूप परमाणु कहलाता है और वो अष्टक रूप होता है, आठ प्रकार का। इतरे वर्णन इनकी, और क्या वर्णन करते हैं दूसरे लोग? अब देखो, वर्णन सब एक ही चीज का कर रहे हैं, पृथ्वी आदि का, लेकिन वर्णन अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। इसको उन्होंने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, कारण विपर्यास कहा। क्या वर्णन किया दूसरों ने? तो बोले पृथिव्यप्तेजो वायवः काठिन्यादि द्रवत्यादि द्रवत्वादि उष्णत्वादि ईरणत्वादि गुणाः। बोले पृथ्वी जो है उसमें कठिनता नाम का गुण होता है, और आदि शब्द से और भी खुशबू वगैरह गुण होते हैं उसमें, और जल जो होता है उसमें द्रवत्व तरलता होती है, पानी जो है तरल पदार्थ है ना वो, और आदि शब्द से और भी उसमें जल में जितने और कोई गुण है वो। फिर अग्नि जो है उसमें उष्णत्वादि गर्माहट वगैरह होते हैं, और वायु में ईरणत्वादि, ईरण यानी बहना, प्रवाहित होते रहना, चलते रहना। ऐसे गुणों वाले जाति भिन्ना परमाणु, अलग अलग जाति वाले परमाणु हैं कार्य से आरंभ का। तो वो इस कार्य को यानी पृथ्वी रूप कार्य को, जल रूप कार्य को प्रारंभ करने वाले अलग जाति के परमाणु होते हैं। ये कारण विपर्यास हो गया, यानी किसी कार्य का भलता ही कारण मान लेना, यथार्थ कारण को न जानते हुए, उसका नाम कारण विपर्यास है। क्योंकि कारण संबंधी यहां पर विपरीत निर्णय है। भेदाभेद विपर्यास। अब भेदाभेद विपर्यास कौन सी विपरीतता है? तो आचार्य कहते हैं कारणात् कार्यम अर्थांतरभूतमेवेति अनर्थांतरभूतमेवेति च परिकल्पना। दो प्रकार के मान्यता है भेदाभेद विपर्यास के बारे में, कि कारण से कार्य अलग ही होता है, और कोई ये मानते हैं कि कारण से कार्य अलग नहीं होता, कभी नहीं होता अलग। लेकिन ये दोनों मान्यताएं विपरीत हैं, क्योंकि जैसे पहली मान्यता क्या है कि कारण से कार्य एक ही द्रव्य में होता है, एक ही द्रव्य में कारण होता है, एक ही द्रव्य में कार्य होता है, ऐसा अगर मानते हैं इसको विपर्यास कहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो उपादान को ही कारण मानता है वो मिथ्या ज्ञान है। आ रहा है क्लियर समझ में? आ रहा है उपादान का मतलब? भात जो बना वो चावल के दाने से ही बना, और कोई कारण नहीं भात बनने का, ठीक है ना? ये दृष्टांत हो गया उसका। तो इसको आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें भेदाभेद विपर्यास है। और दूसरा अनर्थांतरभूतमेवेति। अच्छा नहीं, पहला वाला अर्थांतरभूत, दूसरा वाला अनर्थांतरभूत। तो दूसरे वाले में उपादान को ही कारण मानना हो गया, और पहले वाले में निमित्त को ही कारण मानना, उपादान कुछ नहीं मानना, दोनों ही मिथ्या ज्ञान है। जो निमित्त को ही सब कुछ मानते हैं उनका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, और जो उपादान को सब कुछ मानते हैं, निमित्त को मानते ही नहीं, उनका भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। भेदाभेद विपर्यास। भेद का मतलब कारण और कार्य में भेद, और अभेद का मतलब कारण और कार्य में अभेद। तो एक ही चीज हो गई कारण, और उसी चीज में होगा कार्य। पर जैन दर्शन की मान्यता क्या है? कि कथंचित निमित्त सापेक्ष कार्य और कथनचित उपादान सापेक्ष है, इन दोनों के तालमेल से कार्य होता है, एक अकेले से नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत बरसों बाद स्वाध्याय हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि का, 7 साल पहले हमने स्वाध्याय किया था और उसके पहले 8 साल पहले किया था, उसके पहले 5 साल पहले आचार्य श्री ने पढ़ाई थी सर्वार्थ सिद्धि 86 में, 4 साल पहले, 86 के बाद 90 में, फिर 90 के बाद फिर 98 में, और फिर अभी पढ़ रहे हैं अपन। तो इसमें ये बात बहुत अच्छी है ख्याल में रखने की, कि जो केवल निमित्त को ही कारण मानता है वो भी भेदाभेद विपर्यास में, मतलब इसको अपन ऐसा कर लो भेद विपर्यास हो गया उसको, कि भिन्न वस्तु ही कारण है, वो कारण और कार्य भिन्न ही होते हैं, ये भेद विपर्यास। और अभेद विपर्यास मतलब कारण और कार्य अभिन्न ही होते हैं, ये उपादान का एकांत हो गया। तो इन दोनों को विपर्यास कहा है, मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में रखा है, क्योंकि मिथ्या दर्शन के उदय से ऐसी विपरीतता ज्ञान में आ जाया करती है। स्वरूप विपर्यासो, स्वरूप विपर्यास क्या वस्तु है, रूपादयो निर्विकल्पाः, रूपादिक जो होते हैं निर्विकल्पाः संति, न संत्येव वा, विकल्प रहित ही होते हैं अथवा विकल्प रहित होते ही नहीं है। वो जो ही लगा दिया ना वहां पर स्वरूप संबंधी विपर्यास आ गया, तदाकार परिणतम विज्ञानमेव, उसके आकार परिणमन करने वाला तो अपना विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान ही होता है, न च तदालंबनम वस्तु बाह्यमिति, और जो ज्ञान होता है, देखो क्या कल्पना की उन्होंने अन्य मत वालों ने, बड़ी विचित्र कल्पना है। योग वासिष्ठ महारामायण में भी हमने देखा था कि उनकी मान्यता ये थी कि जिस पदार्थ को अपना ज्ञान जानता है उस पदार्थ में भी ज्ञान होना नियामक है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान नहीं जानता, ये उनका मत था। तो ऐसा है क्या, जड़ पदार्थ अपन कह रहे हैं, उनका मत तो यह है कि ये जड़ दिख रहा है लेकिन इसमें भी ज्ञान है, अब क्या जवाब बोलो तो इसको उन्होंने विपर्यास कह दिया। अब वो जड़ हो या चेतन हो, लौकिक परिभाषा कुछ भी हो उसकी, लेकिन जिस वस्तु में ज्ञान है उसी को अपन जान सकते हैं, ज्ञान रहित वस्तु का ज्ञान नहीं होता, ये उनका मत है, अब क्या करोगे। तो ऐसे बहुत सारे मत हैं। तो अब ये जो मत यहां बतला रहे हैं ना, वो ये बतला रहे हैं कि अपना ज्ञान ही अनेक अनेक आकार रूप परिणत हो जाता है, तो अपने को लगता है कि ये सब कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, और उस माया में अपन उलझ जाते हैं। बस उस अज्ञान को दूर करने से अगर ये समझ में आ जाए कि ये सब मेरे ज्ञान का ही सब तमाशा है, तो फिर विवेक जागृत हो जाता है, और फिर उस बंधन से मुक्त होकर, मोह से छूटकर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। तदाकार परिणतम न च तदालंबनम वस्तु बाह्यमिति, बोले कि जैसे जैन दर्शन में क्या माना कि अपन अगर लाल रंग को जान रहे हैं तो कोई लाल आलंबन वाली कोई वस्तु जरूर होनी चाहिए वहां, लेकिन उनका मानना क्या है कि कोई वस्तु नहीं होती, बोले सब अपने ज्ञान में ही सब कल्पित हो जाता है और फिर अपने को सब भ्रम रूप दिखाई देता है, ये सारा संसार एक माया जाल है, कहते हैं ना वो कि ये सब माया है, कुछ सत्य नहीं है, बोले सब जंजाल है। बोले देखो शब्दों का इस्तेमाल वैसे ही करते हैं वो जैसा अपने यहां होता है, लेकिन उसका भाव क्या लेते हैं कि सब मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। बस ये जिसने समझ लिया कि ये सब झूठा है, झूठा है जग का मेला, मतलब ये जो कुछ भी दिख रहा है वो कुछ भी है ही नहीं, ऐसा जिसने समझ लिया वो ज्ञानी जीव है, बोले। अब ऐसी कितनी सारी विचित्र विचित्र मान्यताएं हैं संसार में, एवं अन्यानपि, इस प्रकार और भी दूसरे प्रकार की परिकल्पना भेदान, परिकल्पना के भेदों को, दृष्टेष्ट विरुद्धान, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष के विरुद्ध सिद्ध हो रहे हैं, अगर वो सब अपना ज्ञान ही है जो सारा माया जाल दिख रहा है अपने को, तो फिर कई बाधाएं आ जाएंगी, प्रत्यक्ष और परोक्ष से कई बाधाएं खड़ी हो जाएंगी, फिर 4 लोगों को एक जैसा ज्ञान और फिर 5वें को अलग प्रकार का ज्ञान कैसे होगा, या फिर सारी दुनिया जिस वस्तु को देख रही है, सफेद रंग की कोई वस्तु है, इतने करोड़ों दर्शक देखते हैं राहुल द्रविड़ को, तो सबको वो राहुल द्रविड़ क्यों दिख रहा है? जब वो अपने ज्ञान की माया है तो फिर सबको वो एक जैसी क्यों दिख रही है? ऐसी प्रत्यक्ष और परोक्ष से बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। हम कभी कभी दृष्टांत ऐसे करंट जो अभी वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उसके दे देते हैं ऐसे, ताकि सरलता से वो बात समझ में आ जाए। मिथ्या दर्शन उदयात, इसका कारण क्या है? ऐसी विपरीत मान्यताएं, ऐसे स्वरूप संबंधी विपरीतता को कौन उत्पन्न करने वाला है? तो आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दर्शन के उदय से परिकल्पयंती, कल्पयंती वैसी परिकल्पना वो लोग कर लेते हैं, तत्र च श्रद्धानम उत्पादयंती, और उस कल्पना में उनकी श्रद्धा भी जम जाती है। संतोषी माँ पिक्चर देखने वालों की ऐसी श्रद्धा जम जाती है कि किसी न किसी दिन संतोषी माँ आकर के वहां से उतरेगी और फिर मेरे को ऐसे हाथ करके आशीर्वाद देगी, मेरी सारी विपदा टल जाएगी। श्रद्धानम च उत्पादयंती, श्रद्धान भी उत्पन्न कर देते हैं। और ततस्तन मत्य ज्ञानम श्रुता ज्ञानम विभंग ज्ञानम च भवति, उस कारण से वह जो ज्ञान है वो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान बन जाता है। सम्यक दर्शनम पुनस, और सम्यक दर्शन तत्वार्थ आदिगमे श्रद्धान उत्पादयति, तत्वार्थ को जान लेने के बाद श्रद्धान उत्पन्न कराता है। ततस्तन मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम अवधि ज्ञानम च भवति, इसलिए वो जो ज्ञान है वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान बन जाता है। आह, अब कोई कहता है प्रमाणम द्वि प्रकारम वर्णितम, दो प्रकार के प्रमाणों का वर्णन पूर्ण हुआ। प्रमाणिक देशाश्च नयास, प्रमाण के जो हिस्से होते हैं, एक देश होते हैं, उनको नय कहा गया था। कहाँ कहा गया था? प्रमाण नयैरधिगम, इसकी व्याख्या में। तदनंतर उद्देश्य भाजो निर्देशव्या, आह बोले कि ये प्रमाण का वर्णन करने के पश्चात नयों के बारे में बतलाना यहाँ पर प्रसंग प्राप्त है, इसलिए उनका निर्देश करना चाहिए, माने नयों की जानकारी भी देनी चाहिए। निर्देश का अर्थ क्या है? सातवें सूत्र में था, किसी के स्वरूप का कथन करना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप आ गया, तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन। वैसे यहां पर नयों का निर्देश करना चाहिए, मतलब नयों का स्वरूप भी बताना चाहिए। तो उसके लिए पहले अध्याय का आखिरी सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः। ये सात प्रकार के नय हो गए, नैगम संग्रह व्यवहार ऋज सूत्र शब्द समविरूढ और एवं भूत। एतेषां सामान्य विशेष लक्षणं वक्तव्यम्, इन सातों का सामान्य और विशेष लक्षण कहना चाहिए। सामान्य लक्षणम तावत, तो सामान्य लक्षण ये हो गया, वस्तुनि अनेकांतात्मनि अविरोधेने हेत्वर्पणात् साध्य विशेषस्य याथात्म्य प्रापण प्रवण प्रयोगो नयः। क्या सुंदर परिभाषा नय की। कोई भी वस्तु होती है वो कैसी होती है? अनेकांतात्मक होती है, यानी उसमें अनेक प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, जो सुनने में पढ़ने में परस्पर विरोधी लगते हैं लेकिन वहां निर्विरोध रहते, नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति, तत् अतत्, एक अनेक, ऐसे ये तो चार युगल हो गए, ऐसे अनेक युगल वस्तु में एक साथ निवास करते हैं, इसलिए उस वस्तु को अनेकांतात्मक कहा जाता है। और उस अनेकांत को समझाने की पद्धति का नाम स्यादवाद है। स्यादवाद बड़ा डरावना शब्द लगता है, हमें भी लगता था शुरू में कि ये स्यादवाद क्या बला है, घबराहट होती थी, स्याद अस्ति स्याद नास्ति ये सब सुन करके लगता था कि ये कब घुस प्रवेश करेंगे ये सब हमारे दिमाग में, बहुत भारी विषय है ये तो। लेकिन फिर समझ में आया कि अनेकांत हर वस्तु में होता है, यानी सभी वस्तु अनेकांत रूप है, मतलब उनमें अनेक ऐसे गुणधर्म है जो परस्पर में विरोधी है। जैसे अभी हमने चार युगल बताए ना, नित्य अनित्य, अस्ति नास्ति, तत् अतत्, एक अनेक, ये चार मुख्य रूप से समझाने के लिए युगलों को लिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे युगल हैं, समयसार प्रवचन सार ग्रंथों में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बहुत गहराई में उसका खुलासा किया है, फिर भी वो कहते हैं कि भाई इतना ही समझने के लिए काफ़ी है, ज़्यादा विस्तार नहीं करते। अब वो कह रहे हैं कि विस्तार नहीं करते, मतलब विस्तार कितना होगा, अनुमान लगाओ, तो बड़ा समुद्र है। तो इसमें नयों की परिभाषा बताते हुए आचार्य कह रहे हैं, वस्तुनि अनेकांत आत्मनि, अनेकांत आत्मक जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसमें अविरोधेन, विरोध न होत्पन्न हो, इस प्रकार हेत्वर्पणात्, हेतु की अर्पणा से, यानि किसी दृष्टि से, किसी कारणवश, ठीक है ना। हेतु का अर्थ क्या हुआ? कारण। तो हेतु की अर्पणा से, अर्पणा मतलब होता है जैसे कभी बेटा अपने पिता को पिता कहता है, तो वो बेटे की अपेक्षा से पिता हो गया, तो अभी हेतु किसको बनाया? पिता का बेटे को। तो वहां पर जब दृष्टि डालते हैं तो उसको अर्पणा बोलते हैं, और फिर अपने पिता की दृष्टि से वो बेटा होगा, जो बेटे की दृष्टि से पिता है वही व्यक्ति अपने पिता की दृष्टि से बेटा है, तो वहां पर वो हेतु को अर्पित कर दिया। तो उसके इसके माध्यम से साध्य विशेषस्य, जो साध्य विशेष है, साध्य विशेष क्या है? ज्ञान, जो अपने को समझना है वस्तु के बारे में, उसका याथात्म्य प्रापण प्रवण है, यथार्थ रूप से उस ज्ञान को प्राप्त कराने में जो प्रवण है, प्रवण माने कुशल, ऐसे प्रयोग का नाम है नय। क्या सुंदर परिभाषा, लंबी जरूर है लेकिन परिभाषा बिल्कुल सटीक है, कहीं से चूकने वाली नहीं है। वस्तु अनेकांतात्मक है तो इसलिए उसको समझने के लिए विरोध पैदा न हो, इस तरीके से किसी कारण को विवक्षित करके जो साध्य विशेष है उसके बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त कराने में कुशल जो प्रयोग होता है उसको नय कहते हैं। सद्वेधा, उस नय के दो भेद हैं, नय के दो भेद हैं। अभी यहाँ सूत्र में सात थे और अब टीका में दो हैं, इसका खुलासा देखिएगा आगे। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकश्चेति, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यम सामान्य उत्सर्ग अनुवृत्तिरित्यर्थ, द्रव्य कह लो, सामान्य वर्णन कह लो, उत्सर्ग यानी सीधा रास्ता, राजमार्ग कह लो, अनुवृत्ति यानी जो सतत बना रहता है, चलता रहता है, हमेशा साथ रहे, उसको अनुवर्तन कहते हैं। ये सब एक अर्थवाची है। तद विषयो द्रव्यार्थिक, वो जिस नय का विषय है, यानी जो नय उस सामान्य को दृष्टि में लाता है, वो द्रव्यार्थिक नय है। नर नारक आदि निगोद आदि पर्यायों से सिद्ध पर्याय तक, जो एक जो समान रूप से चला आ रहा है उसको पकड़ने वाला, जीव द्रव्य को पकड़ने वाला जो द्रव्य होगा, जो नय होगा, वो द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा। पर्याय विशेषोपवादो व्यावृत्तिरित्यर्थ, पर्याय का मतलब होता है विशेष यानी भेद, अपवाद और व्यावृत्ति, व्यावृत्ति का भी अर्थ वही होता है भेद। तद विषय पर्यायार्थिक, उसको विषय करने वाला अथवा वो जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक नय होता है। तयोर भेदा नैगम आदयः, इन दो नयों के सात भेद सूत्र में बताए गए, नैगम आदि, तेषां विशेष लक्षण मुच्यते। अब इन सातों के विशेष लक्षण को कहा जाता है अनभिनिवृत्तार्थ, निर्वृत्तार्थ, अनभिनिवृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नैगमः। अभी निर्वृत्तार्थ यानी पूरा कार्य हुआ नहीं है, लेकिन तो भी उस कार्य संबंधी संकल्प मात्र से जो उस कार्य को ग्रहण करने वाला नय है वो नैगम नय है। जैसे उदाहरण क्या दिया, कंचित पुरुषम परिगृहित परशुम गच्छन्तम अवलोक्य कश्चित पृच्छति किमर्थम भवान गच्छति इति। किसी पुरुष को परिगृहित परशुम, हाथ में कुल्हाड़ा लेकर के जाते हुए अवलोक्य देख करके, कश्चित पृच्छति, दूसरा पूछता है कोई, किमर्थम भवान गच्छति इति, तुम किस लिए जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो कुल्हाड़ी लेकर के? तो वो जवाब क्या देता है, स आह प्रस्थ माने तुमिति, लकड़ी से बनने वाला कोई औजार होता है प्रस्थ, वो एक लकड़ी का नाप होता है, प्रस्थ बोलते हैं उसको, तो उसमें चने वगैरह हैं या फिर कोई और अनाज है, उसको ऐसे निकाल करके दुकान वाले लोग देते हैं। अभी आजकल तो तराजू वगैरह ज़्यादा चलते हैं, लेकिन वो प्रस्थ नाम का एक माप होता है, तो उसको लाने के लिए जा रहा हूँ, जा कहाँ रहा है वो, नासव तथा प्रस्थ पर्याय सन्निहित, बोले कि वो इस समय तो प्रस्थ पर्याय से सन्निहित नहीं है, मैंने उसके संपर्क में नहीं है। लेकिन तद अभिनिर्वृत्तये संकल्प मात्रे प्रस्थ व्यवहार, वो अंदर संकल्प कर चुका है कि लकड़ी लाऊंगा और उससे प्रस्थ बनाऊंगा, इसलिए उस संकल्प मात्र से वो कह सकता है कि मैं काम नहीं हुआ है अभी, लेकिन उस काम को बताते हुए कह सकता है कि मैं ये कर रहा हूं।